लेख है कि सत्संगति मुक्ति से भी बढ़कर है। उसमें कई बातें विशेषता से बताई कि अच्छे अच्छे संत महापुरुष होते हैं, वो भगवान से अपना कल्याण नहीं चाहते, सब जीवों का कल्याण करना, सबके बाद हमारा कल्याण। उस प्रसंग में बताते कहते हैं कि दयालु महात्मा समझते हैं कि सत्संग से बढ़कर कोई नहीं है, पर सत्संग कैसे मिले? तो ये मिलता है भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की दया तो है ही, पर हम मानते नहीं है, ये कमी है। उसकी हरदम कृपा माननी चाहिए। भगवान की तो दया है ही, पर हम मानते नहीं, यही कमी है। उसकी कृपा दया मान लेनी चाहिए। अपने ऊपर तुम प्रभु की जितनी दया मानोगे, उससे बहुत अधिक तुम्हारे पर दया है पहले से ही। मानोगे मानने में कम आएगी, भगवान की दया होने में ज्यादा है। किंतु हम लोग कह देते हैं कि बाप हम तो कृपा मानते हैं, असल में मानते नहीं हैं। यदि अपने पर भगवान की कृपा सच्चे हृदय से मान लेते तो फिर कल्याण में देरी नहीं है। ये कसौटी है। हम चाहते हैं भजन निरंतर होवे, पर मन इधर उधर भाग जाता है, इस कारण नहीं कर पाते। इसमें भी एक कारण है, अपने पर प्रभु की दया का भाव हमारे अंदर नहीं है। भगवान का भजन करते हुए ये समझना चाहिए कि भजन भगवान के कृपा से होता है, अपने प्रयत्न से नहीं होता है, भगवान की दया से कृपा से होता है। हम धोखे में ही बोलते हैं कि भगवान की बहुत दया है, बहुत दया है, धोखे में बोलते हैं। दया मानने का प्रमाण यह है कि हमें क्षण क्षण में इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि हम कह नहीं सकते। इतना आनंद आए कि हमको देखकर दूसरा आदमी मुग्ध हो जाए। जरा सोचो, भगवान की दया अपने पर मानने वाला चिंता में, शोक में, भय में रह ही कैसे सकता है? चिंता शोक में तो डूबे हुए हो और कहते हो कि भगवान की दया है, भगवान की दया है, ये धोखा है। अब भगवान की हमारे पर क्या दया है वो बताते हैं। परमात्मा ने दया करके हमको मानव शरीर दिया, मनुष्य बनाने के साथ मुक्ति का अधिकार दे दिया। ये काम तो भगवान ने दे ही दिया, दया का फल है। जो हमें मानव शरीर मिला है ये भगवान की दया ही है। मनुष्य जन्म हुआ उसी दिन प्रभु की पूर्ण कृपा हमारे पर हो गई। अब भी यदि भगवत प्राप्ति नहीं होती है तो समझना चाहिए हम भगवान की कृपा के लात मार रहे हैं। प्रभु हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं और हम उसे हटाते रहते हैं और कहते हैं हमें नहीं चाहिए आपकी दया। बताओ ये कैसी मूर्खता है? यह निरी मूर्खता के सिवा और क्या हो सकता है? केवल मूर्खता बताइए, निरी मूर्खता। भगवान ने दया की मानव शरीर दिया, भगवान ने दया की ये आर्यावर्त देश भारतवर्ष मिला, भगवान ने दया की कि ये कलयुग का समय मिला, क्योंकि इस कलयुग के अंदर भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से वह पद प्राप्त कर सकते हैं जिसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ध्यान, यज्ञ और पूजा से प्राप्त करते थे। भागवत में लिखा, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इसलिए ऐसा समय मिलने वाला नहीं जिसमें भगवान का नाम ले और अपना जल्दी से जल्दी कल्याण करो। ऐसे सुलभता से भगवत प्राप्ति होने वाले काल में जन्म हो और जाति बड़ी ऊंची, प्रभु ने तो हम पर पूर्ण कृपा कर दी, हम उसको ठुकराते हैं। ऐसे आदमियों के लिए तुलसीदास जी ने बड़े कठोर शब्द कहे हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। मानव शरीर मिल गया और अच्छे संतों का संग मिल गया, देश मिल गया, समय मिल गया, अब भी मनुष्य भवसागर से पार नहीं होता है तो उसको आत्महत्या का पाप लगता है। आत्मघातियों की अंत में बहुत बुरी दशा होती है, क्योंकि उनको भयंकर नरक मिलता है, वहां दुखों का कोई अंत नहीं है। आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्यों को भी मरकर कहीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। जरा सोचो कितनी नीची बात है, कितनी निकृष्ट बात है कि भगवान की इतनी दया रहते हुए भी हमें अधोगति को जाना पड़ रहा है। भगवान की दया के सामने दया कर रहे हैं, दया करने के लिए तैयार, और दया को ठुकरा करके हम अधोगति को जा रहे हैं। ये बहुत गहराई से सोचने की बात है। प्रभु की हरदम अपने पर दया मानो। प्रभु की दया मानने पर उनका निरंतर चिंतन होगा, ये स्वाभाविक बात है। हमारा कोई थोड़ा सा उपकार करता है तो हमें वो उपकार करने वाला बार बार याद आता है, पर उसका उपकार तो बहुत सीमित है। प्रभु ने हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया है और हम उनको भूल रहे हैं, हम कितने कृतज्ञ हैं। वास्तव में भगवत प्राप्ति हमारे कार्यों से, कर्मों से, पुरुषार्थ से नहीं होती, प्रभु की दया से होती है। भरत जी कहते हैं, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत मोरी, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ, मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिली आई राम सगुना सोई। भगवान का नाम पतित पावन है, पर हम अपने को पतित मानते ही नहीं है तो भगवान कैसे पावन करेंगे। हम अपने को बड़ा समझदार मानते हैं, बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, बड़े विचारक सम मानते हैं, तो भगवान हमको कैसे पावन करेंगे। प्रभु तो फिर भी हम पर दया ही करेंगे और करते रहेंगे। उद्धार में हम ही विलंब कर रहे हैं यदि हम अपने को पतित मान ले, और पतित मान करके आफत में पड़े हुए आदमी के समान भगवान को पुकारने लगे तो उद्धार में क्या विलंब है। हम तो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने को तृण से भी नीच कहां मानते हैं। भरत जी अपने को पतित मानते थे, अवगुणी मानते थे, और प्रभु के आने में विलंब केवल इसलिए है कि हमारा विश्वास नहीं है। प्रभु तो एक बार नामोच्चारण से आ सकते हैं, पर विश्वास नहीं है। भगवान तो आने के लिए तैयार है, पर हमें विश्वास नहीं तो कैसे आया। मनुष्य के ऊपर तो भगवान ने ऐसी दया की है कि दया का भंडार ही खोल दिया, दया का भंडार खोल दिया भगवान ने अपने लोगों के लिए। जो भगवान की दया समझता है, फिर भय कैसे हो सकता है। अरे एक राजा की मित्रता होती है, हमारा किसी राजा के साथ मित्रता का संबंध हो जाए तो हम निर्भय हो जाते हैं, चित्त से चिंता मिट जाती है। फिर जिस प्रभु की दया के सामने राजा की मैत्री कुछ भी नहीं है, उस स्वामी की इतनी दया हो, फिर तो हमको किसी काल में भय होना ही नहीं चाहिए। यदि भय होता है तो ये हमारी मूर्खता है, हम दया के रहस्य को समझे ही नहीं। भक्त तो स्त्री पुत्र धन आदि की हानि होते देख सुनकर प्रसन्न होता रहता है। देखो कितनी बड़ी बात है, भक्त तो धन की हानि, पुत्र की हानि, स्त्री की हानि, इनको देख देख कर प्रसन्न होता है। वाह वाह, बड़ी कृपा की, मेरा परम हित किस बात में है, इस बात को देखो प्रभु जानते हैं, उन्होंने मेरे पर कैसी कृपा की है। जिस धन को मैं मेरा मानता था, उसको भगवान ने अपना मानकर छीन लिया, घाटा लगा दिया। तो भगवान ने हमारे धन को अपना माना, तब न वो छीना, घाटा लगाया। भगवान कितना हमारे साथ अपनापन करते हैं। मेरा मोह हटाने के लिए भगवान घाटा बनकर आ गए। वह तो अपने आप को, अपने सर्वस्व को, अपने सारी चेष्टाओं को परमात्मा में अर्पित कर देता है। भक्त सारी चेष्टाओं को भगवत अर्पण करना, ये सर्वस्व अर्पण है। सत्संग करो, बोधयंत परस्परम, अच्छी चर्चा की कृपा से, उसके प्रताप से और भगवान की दया से, दोनों के मेल से बड़ा भारी लाभ होता है। भगवान ने कहा, अमृत स्वरूप गीता धर्म का जो प्रचार करता है, उसके समान न तो कोई प्रिय है न आगे कोई होगा। कितनी सुंदर बात है, गोपियां भगवान को प्रिय थीं, पर भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि भाई तुमसे बढ़कर मेरा भविष्य में कोई प्रेमी नहीं होगा, किंतु गीता के लिए कह दिया, जो गीता का प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय न हुआ न है न होगा। भगवान की बात का प्रचार करने वाला भक्ति का सदा व्रत बांटता है, वो ये नहीं चाहता कि हमारी मुक्ति हो, उधर उसका ख्याल ही नहीं होता है। जैसे भोजन परोसने वाले को अपनी भूख मिट जाती है, वह तो दूसरों के दुख से दुखी होकर दया में डूब जाता है, और दूसरों की मुक्ति होती है तो वो प्रसन्न हो जाता है। तुष्यंति च रमन्ति च, ऐसे महापुरुष का सत्संग मिलता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। वे महापुरुष केवल सत्संग में मुग्ध रहते हैं, उनकी मस्ती को देखकर दूसरे लोग भी मस्त हो जाते हैं। केवल मुग्ध नहीं रहते, जैसे भगवान के बाल सखा भगवान की लीला में भाग लेते थे, उसी प्रकार वे भी भगवान की लीला के चिंतन में भगवान की लीला में जुड़ जाते हैं और नाचते फिरते हैं, मस्त रहते हैं। उनका इस जगत से कोई लेना देना ही नहीं होता और फिर कहते रहते हैं कि हे भगवान हमको नरक में भेज दो, जहां आपकी इन लीलाओं को हम लोगों को सुनाएंगे तो वो नरक भी बैकुंठ हो जाएगा। ये बात है। भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप का ध्यान और भक्तों की कथा, ये हरदम नई नई होती है। कथा कीर्तन कलि विषय भव सागर की नाव। भगवान जिस समय सीता के वियोग में साधारण मनुष्य की तरफ विलाप करते हैं, तो ऋषि मुनि देख करके भगवान के दुख में दुखी हो जाते हैं। ये क्या बात है, ये भगवान की लीला है। भगवान जानते थे कि ये माया मृग है, ये मारीच है, ये भी मालूम था कि अब रावण आएगा और सीता को ले जाएगा। फिर भी भगवान ने ऐसा नाटक क्यों किया? वो इसीलिए किया कि मेरे दुख में दुखी हो जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाए। तो जो भगवान के वियोग की लीलाओं में, दुख भरी लीलाओं में रोता है, उसको अपने दुख के लिए रोना नहीं पड़ता। तो भगवान हमारा रोना मिटाने के लिए रोते हैं, सीता के लिए नहीं रोते। इसीलिए पितामह भीष्म भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान फिर पितामह भीष्म का करते हैं। भीष्म तो करते हैं भगवान का और भगवान करते हैं भीष्म का। सीता जी अशोक वाटिका में भगवान के लिए विलाप कर रही है, इसलिए राम जी भी सीता के लिए जंगलों में भटक भटक करके विलाप कर रहे हैं। सीता जी भगवान के लिए आकुल व्याकुल है तो भगवान सीता जी के लिए आकुल व्याकुल है। गीता में कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भाई गीता तो बाद में आई, रामावतार तो पहले ही हो गया, तो यथा तथा वाली बात रामायण रामावतार में कैसे लागू होती है? तो कहते हैं एक तो कानून पुस्तकों में लिखा जाता है और एक कानून व्यवहार दृष्टि से पहले से ही होता है। तो गीता में तो वो कानून लिखा गया, बना तो बहुत पहले से ही था। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम्। अर्जुन भगवान का भक्त था, इसलिए वे रहस्य की बातें बोलते थे। भगवान का ये रहस्य अनादि है, नित्य है, सदा से है। भगवान की हर लीला में हमें रहस्य निकालना चाहिए, केवल ऊपर ऊपर से बातें नहीं करनी चाहिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में दूत बनकर जाते हैं, उस समय पूछते हैं बताओ जाकर क्या कहूं। युधिष्ठिर जी सबसे सलाह ली भगवान ने कि बोलो भाई मैं क्या कहूं जाकर के। तो युधिष्ठिर ने, भीम ने, द्रौपदी सभी ने अपनी अपनी बात कही। भगवान कृष्ण का द्रौपदी घबराओ मत, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे केश जिन्होंने खींचे हैं, जो अत्याचार किया है, वे सब दुष्ट मारे जाएंगे। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, मेरी बात झूठी नहीं होगी। यदि दुर्योधन राज्य लौटा देगा तब तो भाई उनकी रक्षा हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब कोई कहे कि फिर भगवान संधि कराने गए ही क्यों, तो वो इसलिए गए पांडवों की साधुता की रक्षा के लिए भगवान गए। सारी दुनिया में पांडवों के द्वारा जो मर्यादा, जो धर्म, जो साधुता स्थापित की है, उसका सब जगह प्रचार करने गए हैं, उसको स्थापित करने गए। भगवान ने कहा कि मुझे मालूम है, जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे तो मार्ग में ऋषि मुनि मिले। उन ऋषि मुनियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर के कहा, महाराज एक बात पूछते हैं कि क्या आप ये संधि का प्रस्ताव लेकर जाते रहे हो, पर महाराज क्या होगा आपको पता है कि मुझे पता है, युद्ध होगा, ये लोग राज्य देंगे नहीं, फिर आप क्यों जाते हो आपकी बात खराब करने के लिए। कि नहीं नहीं, मैं इसलिए जाता हूं कि 18 अक्षौहिणी सेना को बचाने का मुझे पुण्य मिल जाएगा। कोई कहेगा कि कृष्ण मौजूद था, उसने संधि का प्रस्ताव करके आपस में मेल मिलाप नहीं किया, मेरे पर दोष नहीं लगा सकता। रहस्य है कि युद्ध होगा, तो ऐसी लीलाएं रहस्य की होती हैं। भगवान ने भीम को भी और द्रौपदी को भी उत्तेजित भी किया और समझाया भी। बाहर का व्यवहार नीति युक्त धर्म युक्त है, ध्येय दूसरा है भगवान का। भगवान का ध्येय क्या है ये रहस्य की बात है। इससे हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यवहार तो बिगड़े नहीं और ध्येय में कमजोरी आवे नहीं। माने बाहर का व्यवहार, आपस का व्यवहार बिगड़ना नहीं चाहिए और हमारा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति, उसमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए। भगवान का रहस्य था कि विभीषण की रक्षा करनी, परंतु सुग्रीवादी सब उसके विरुद्ध है, तो भगवान ने सुग्रीव को भी प्रसन्न किया और विभीषण को भी प्रसन्न कर लिया। खूब कुशलता से काम लिया भगवान ने। इसी तरह भगवान दुर्योधन के पास भी जाते हैं। दुर्योधन को पता चला कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो जगह जगह व्यवस्था कर दी, सेवा कर दी, भगवान को प्रसन्न कर दूं। दुशासन के महल में ठहरने की व्यवस्था की, खूब मूल्यवान रत्न भेंट करने के लिए सामने लाए, खूब अगवानी की, सत्कार किया। भगवान आए, जहां जहां सत्कार की व्यवस्था थी, भगवान ने उधर नजर उठा करके नहीं देखा, सीधे आकर दुर्योधन से मिले। दुर्योधन ने पूछा कि मेरा अतिथि सत्कार स्वीकार क्यों नहीं किया। भगवान ने कहा ये एक रहस्य की बात है। देखो दुर्योधन, मनुष्य दो जगह सेवा स्वीकार करता है, या तो कोई आपत्ति में पड़ जाए या अगले में प्रेम बहुत हो। मेरे पर तो कोई आपत्ति नहीं है और प्रेम तेरे में नहीं है। दुर्योधन से कुछ कहा नहीं बना, दुर्योधन लज्जित हो गया। भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने कहा, महाराज हमारे घर चलो। भगवान ने दुर्योधन को जैसा उत्तर दिया वैसा तो नहीं दिया, लेकिन भगवान ने बड़े कोमलता से कहा कि मैंने विदुर के घर ठहरने का विचार कर लिया, उनके घर भगवान बिना बुलाए चले गए, अपना विचार करके चले गए। फिर सभा में आए, संधि की बात छेड़ी। दुर्योधन ने कहा महाराज संधि नहीं हो सकती, संधि तो मेरे मरने पर होगी, या तो सारी पृथ्वी का राज दुर्योधन का रहेगा या युधिष्ठिर का होगा। वहां भगवान खुशामदी करने लग गए, जिसका अतिथि सत्कार स्वीकार नहीं किया अब भगवान उसकी खुशामदी स्वीकार करते हैं। कहने लगे अरे पांडवों का राज्य तो तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है, दुर्योधन ये उनको दे देना चाहिए, ऐसा मत करो दुर्योधन। अच्छा यदि तुम पूरा राज्य नहीं देते हो तो 5 गांव ही दे दो, बाकी सारा राज्य तुम रखो, वे एक एक गांव लेकर के प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्योधन ने तपाक से कहा पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता एक बारीक सुई की नोक से जिसको छेदा जा सके, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। दुर्योधन चला गया, मुंह बना करके चला गया। भगवान ने कहा रे दुर्योधन जिस काम के लिए आया हूं पूरा हो जाए तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। ये बात तो भगवान को उस समय कहनी चाहिए थी, पर यहां खुशामदी करते हैं भगवान, नहीं माना हूं। भगवान से बात तो करनी चाहिए थी, परंतु दुर्योधन कर्ण सब उठकर चले गए और आपस में सोच रहे कि इस कृष्ण को यहां कैद कर लो, जाने ही मत दो, जब उसको कैद कर लेंगे तो पांडव लोग इसकी चिंता करते करते मर मरा जाएंगे। शकुनी ने सबको ये सलाह दी कि तुम ऐसा ही करो। सात्यकी को पता चल गया, सात्यकी किसी से दबने वाला नहीं था। यादवों में श्री कृष्ण और बलराम के बाद सबसे बड़ा ताकतवर सात्यकी था। सात्यकी चा पराजित है, वह द्वार पर आया। द्वार पर नारायणी सेना का अधिपति कृतवर्मा खड़ा था, उनको दे दी थी। यह भी रहस्य की बात है, भगवान ने दुर्योधन को और अर्जुन को दोनों को ही सहायता दी। तो कृतवर्मा खड़े थे द्वार पर, सात्यकी जाकर के उनसे मिला, कहा कि दुर्योधन और पांडवों की लड़ाई के बीच में तो तुम नारायणी सेना के सेनापति होकर पांडवों से लड़ाई कर दो। भगवान कृष्ण यदि दुर्योधन को कैद करना चाहता है उस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य होता है? तो कृतवर्मा भी खड़ा हो गया कि नहीं हम कृष्ण का पक्ष लेंगे, हम यहां हम इनके पक्ष में थोड़ी रहेंगे, दुर्योधन के पक्ष में। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, रहस्य आगे और है, समय हो गया। परंतु आगे आने पर लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि कृष्ण ने संधि का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए लोक की दृष्टि से जाना ठीक था और उन्होंने संधि नहीं की तो उससे पहले द्रौपदी नाराज हो गई, उसको भी संतोष दिलाया कि युद्ध होगा, सब मारे जाएंगे, तो उनको भी संतोष दिलाया। हमारा काम यथा योग्य सब जगह सबको प्रसन्न करना है। सेठ जी आगे बताते हैं कि भगवान की सहायता लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारिका में पहुंचे। भगवान सोए हुए थे, दुर्योधन सिराने की ओर मूल्यवान आसन पर बैठ गया और अर्जुन चरणों की ओर बैठ गया। भगवान ने दोनों की सहायता की। भगवान जब उठे तो उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, बाद में दुर्योधन को देखा। दोनों ही एक काम के लिए आए थे, युद्ध में सहायता मांगने। भगवान ने कहा कि भाई देखो, एक ओर तो मैं बिना शस्त्र का हूं और एक ओर मेरी नारायणी सेना है। नारायणी सेना का एक एक योद्धा मेरे बराबर बल वाला है। परंतु तुम दोनों में पहले मैं अर्जुन को बोलता हूं कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अर्जुन ने कहा कि महाराज, नहीं, दुर्योधन ने कहा कि महाराज पहले मैं आया हूं, पहले मुझे मौका दीजिए। भगवान ने कहा कि भाई मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो आपको चाहता हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, उसने कहा मैं तो सेना ही चाहता था और सेना मुझे मिल गई। दुर्योधन के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि देखो कृष्ण कितना बुद्धिमान है, उस बुद्धिमान कृष्ण को आज मैंने ठग लिया। हंसता हंसता चला गया। पीछे से भगवान ने अर्जुन को डांटा, तुमने नारायणी सेना क्यों छोड़ दी? नारायणी सेना को छोड़कर मुझे लेने से क्या लाभ? अर्जुन उस डांट से घबराए नहीं। अर्जुन ने बड़ी नम्रता से हंसते हुए कहा, महाराज मुझे नारायणी सेना की जरूरत ही नहीं, मुझे तो आपकी जरूरत है। भगवान ने कहा, मेरा क्या करेगा? अर्जुन ने कहा, घोड़े हंकवाऊंगा, मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, तो हम लोग भी अपनी बागडोर भगवान में हाथ में दे दें तो फिर साधन भजन करने की जरूरत नहीं है। निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन वाली बात अपने पर भी लागू हो सकती है। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी आप मेरे सारथी बने। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारायणी सेना का प्रलोभन मैंने दुर्योधन के लिए दिया था। मैं भी मन में यही समझता था कि तुम मुझे चालो कितना अच्छा रहेगा। तुम ठीक समझ गए। तो ये तो बात भगवान की बड़ी रहस्य की है। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे तो दुर्योधन बांधने की तैयारी कर रहा था। सात्यकी ने कृतवर्मा से जाकर कहा, अपनी सेना को तैयार रखना, कौरवों से युद्ध करना है। तुम्हें पता है कि नहीं, हम लोगों के जीते हुए ये कौरव महाराज श्री कृष्ण को बांधने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सात्यकी ने भगवान से आकर कहा, महाराज आपको मालूम है कि नहीं आपके बांधने की तैयारी हो रही है? भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान तो जानते ही थे। भगवान ने भरी सभा में धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, आपका यह पुत्र नीच बुद्धि दुर्योधन अपनी नीचता नहीं छोड़ रहा है। मैं दूत बनकर संधि कराने के लिए आपके पास आया हूं और यह दुष्ट मुझे बांधना चाहता है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा, अरे दुर्योधन, तुम ये क्या विचार कर रहे हो? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दुर्योधन ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम मुझे अकेला समझते हो, लो ध्यान देखकर देख, सारे देवता सारे पांडव सेना मेरे शरीर में विद्यमान है। भगवान ने विराट रूप दिखाया, सारे यादव सारे पांडव सारे देवता एकदम प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर भगवान के शरीर में दिखाई देने लगे। भगवान का यह रूप देखकर सब मूर्छित हो गए। जो वहां भगवान के भक्त थे वे गदगद होकर के स्तुति करने लगे। भगवान ने अपना रूप समेट लिया और चले गए। भीष्म और द्रोणाचार्य भगवान के साथ चले गए। भगवान कुंती के पास आए, सारी बात सुनाई। कुंती ने बड़ा आश्चर्य किया, अरे बेटा तेरे साथ ऐसा व्यवहार। कुंती कभी युद्ध के लिए बोलती नहीं थी, कृष्ण के साथ ऐसा बर्ताव देखा तो कुंती ने कहा ही कृष्ण अर्जुन से कहना भीमसेन से कहना कि एक क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र पैदा करती हूं समय तुम्हारे लिए आ गया है। एतत् धनंजयो वाच्य नित्योद्युक्तो वृकोदर है यदर्थम क्षत्रियासु ते तस्य कालोयम आगत है। तुम युद्ध करो राज्य वापिस ले। उन्होंने विदुला की कथा सुनाई। यह संदेश कुंती माता ने दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कुंती माता से कहा, कुंती भुआ थी, मां चिंता मत करो, युद्ध होगा जरूर होगा। युधिष्ठिर तो साधु पुरुष थे, इसलिए कुंती को अर्जुन और भीम के लिए ही कहना पड़ा। तो क्यों कहा? भगवान को बांधने की चेष्टा। इस बात को लेकर कुंती ने आज्ञा दी, तब युधिष्ठिर को युद्ध करना पड़ा, नहीं तो युधिष्ठिर युद्ध नहीं करते। भगवान ने जाकर दोनों बातें खड़ी कर दी। युधिष्ठिर क्या करोगे अब? कुंती की मां बात नहीं मानोगे, मां की बात नहीं मानोगे और मुझे बांधने की चेष्टा की, इसके ऊपर विचार नहीं करोगे? युधिष्ठिर ने कहा महाराज युद्ध करूंगा। इधर भगवान ने अर्जुन को कहा, इस धर्ममय युद्ध के समान तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 5 गांव पर भी वो संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए हमारा युद्ध करना न्याय संगत है। भगवान जोश दिलाते हैं। भगवान में बड़ा विचित्र भाव था। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे में कायरता नहीं आनी चाहिए, सब तैयार हो गए। इसमें रहस्य क्या था कि दुर्योधन के हाथ में यदि राज्य रहेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा और प्रजा तड़प तड़प कर मर जाएगी और दुर्योधन भी नरकों में जाएगा। युधिष्ठिर के हाथ में राज्य रहेगा तो प्रजा में धर्म बढ़ेगा। धर्मात्मा पुरुष की सदा भी जीत विजय होनी चाहिए। ये भगवान की लीला में धर्म का रहस्य भरा हुआ है। एक बार यशोदा मैया ने एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए, तो वो ब्राह्मण अपने हाथ से ही भोजन बनाता था। तो उस ब्राह्मण ने भोजन बनाया, उस ब्राह्मण ने आंख बंद कर ली और भगवान के भोग लगाया। इधर छोटे से भगवान आंगन में खेल रहे थे, कृष्ण भगवान, वे उस मिठाई को जाकर खाने लग गए।
ब्राह्मण ने आंखें खोली देखा तो कह लगा, रे यशोदा जी तुमने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और तुमने अपने लड़के को गोद में नहीं रखा। देखो इस लड़के ने हमारी जो है ये भोग की सामग्री को उठा कर दिया, ये देखो यूं खा रहा है। यशोदा जी ने कहा, महाराज भूल हो गई, मैं मेरे काम में लग गई और ये बच्चा है, इसको कुछ ऊंटे झूठे का ज्ञान तो है नहीं, तो महाराज तकलीफ तो होगी, और बना लीजिए। फिर बनाई, फिर ब्राह्मण ने भोग लगाया। इतने में भगवान गुडाले गुडाले चल के वो खाने लग गए। तीन बार बनाई, तीनों बार यही हाल हुआ। तब यशोदा मैया छड़ी लेकर मारने के लिए आई बच्चे को। भगवान जोर से रोने लगे। भगवान कह लगे, मैया तू तो मुझे लकड़ी से मार करके और मुझे दूर करना चाहती है, और ये ब्राह्मण आंख बंद कर मेरे को बुलाता है। अब बताओ मैं नहीं जाऊं तो क्या करूं? यदि ये नहीं बुलावे तो मैं नहीं जाऊंगा, ये तो मुझे आंख बंद करके बुलाता है, तो बताओ मैं क्या करूं? तब ब्राह्मण को मालूम हुआ कि अरे जिसे मैं बुलाता हूं वे साक्षात भगवान यहां बालक बने हुए हैं। अब ब्राह्मण देवता यशोदा के आंगन में लौटने लग गए, भगवान का ऊंटा किया हुआ भोग लगाने लगे। भगवान ने प्रकट किया कि इसके बुलाने पर मैं इसके पास जाता हूं, ये रहस्य की बात है। भगवान इस बात को जानते थे, प्रकाशित किया तब ब्राह्मण और यशोदा ने जाना, अरे ये तो बड़ी अद्भुत लीला करने वाला है। ऐसे कथा तो हम लोग सब पढ़ते हैं, किंतु भगवान के भक्तों की बात नित नई रहती है, पुरानी होती नहीं। भगवान की कथा को कभी पुराना समझना ही नहीं चाहिए। जैसे भगवान का बहुत गहरी बात कह रहे हैं, जैसे भगवान के स्वरूप का ध्यान कभी पुराना नहीं होता, ऐसे भगवान की कथा भी पुरानी नहीं होती। गीता का श्लोक भी पुराना नहीं होता। जितना नाम लेते हैं वो नाम भी पुराना नहीं होता, पर नया नया नाम है। एक ही नाम का बार बार उच्चारण करने पर भी वो नया का नया ही रहता है। इतना ही नहीं, उस नाम में प्रेम बढ़ता जाता है तो और उसमें नवीनता और आनंद बढ़ता है। ध्यान ज्यों ज्यों जमता है प्रेम बढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की लीला, नाम का जप, भक्तों की कथा, ये सब नए ही रहते हैं, इनको पुराना नहीं समझना चाहिए। ध्रुव जी की कथा सब जानते हैं। धन्य है उसकी मां जिसने कहा कि ईश्वर की भक्ति से सब कुछ हो सकता है। ध्रुव ने कहा, मैं भक्ति करूंगा। मां ने कहा, जाओ बेटा ईश्वर की भक्ति करो, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। देखो मां का हृदय, 5 वर्ष के बालक को वन में भेजती है। वह क्षत्राणी थी, ईश्वर के भरोसे पर बेटे को जंगल में भेज दिया। कोई साथ में नहीं है, नहीं तो इतने बड़े राजा का पुत्र होने के कारण से कोई साथ में हो सकता था, परंतु कोई साथ में नहीं भेजा। ध्रुव जा रहे थे, नारद जी मिले, परीक्षा ली। अरे तुम बालक हो, क्या भगवान की भक्ति करोगे? आओ मेरे पास, तुमको मैं पिता के पास ले चलता हूं। छोड़ो ये बातें, हम बुड्ढे हो गए, हमको भगवान नहीं मिले, तुमको कहां से मिल जाएंगे। पर ध्रुव जी का निश्चय अटल था। नारद जी खुश हो गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, भगवान का ध्यान बताया, ध्रुव जी उनकी बात पर मुग्ध हो गए। वाणी के द्वारा नाम जप, मन से स्वरूप का ध्यान करने लगे। 5.5 महीने बीत गए, भगवान आए, ध्रुव जी ध्यान में मस्त है, उनको पता ही नहीं। भगवान ने उनके ध्यान से अपना स्वरूप अलग किया, तब ध्रुव जी की आंख खुली, देखा रे भगवान तो सामने है। प्रणाम किया, स्तुति करने की इच्छा हुई, भगवान ने गले में शंख छुआ दिया। शंख का स्पर्श होते ही दिव्य वाणी प्रकट हो गई। भगवान ने वरदान दे दिया, तुम्हें राज्य मिलेगा, तुम मुक्त हो जाओगे। एक जगह हमने और ही कथा सुनी है, सेठ जी कहे क्या, ध्रुव जी ने एक वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे ताना मारने वाली जो माँ है उस माँ का, और मेरे जो पिता है जिन्होंने गोद में नहीं बैठा, इन दोनों का कल्याण होना चाहिए। महात्मा ऐसे उदार होते हैं, कितनी बढ़िया बात है। महात्मा ऐसे उदार होते हैं कि अपना अहित करने वालों का भी कल्याण करते हैं। भक्त हैं वो व्यवहार की नीति से ऊपर उठे रहते हैं। भक्त कांटा चुबाने वाले को फूल ही चढ़ाता है। इतना ही नहीं, वो ये कहता है कि त्रिशूल मुझको मिले और फूल उसको मिले, क्योंकि कल्याण तो बोई तो फूल कि इसका कल्याण ही हो। जयदेव कवि की कथा सुनी होगी, संतों के यही लक्षण होते हैं, उनके साथ बुराई करता है उसके साथ भी वे भलाई करते हैं। भगवान केवल संसार के पदार्थों को देकर उसको भुलाते नहीं है, भगवान उसको वह चीज भी देते हैं जो सदा के लिए कल्याण करने वाली भगवान की दया है। इस कथा में हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, इसमें कैसी नीति, कैसी दया, कैसा प्रभाव भरा हुआ है। रहस्य क्या है? नारद जी का उद्देश्य था ध्रुव को भक्त बनाने का, तो फिर ये वापिस जाने के लिए क्यों कह रहे हैं कि ध्रुव को अपनी बात पर, निश्चय पर अटल करने के लिए। दूसरी बात यह भी है कि एक राजा यदि एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह किया, ये अनुचित व्यवहार है। ये बात सिखाने के लिए बात आती है। परंतु धन्य है सुनीति को, जो वह इस बात का समर्थन करती है कि तेरी छोटी मां ने जो बात कही वो ठीक है। ये नीति का बर्ताव है, पतिव्रता स्त्री को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। पति में प्रेम बढ़े और अपने पुत्र को वही शिक्षा देनी चाहिए जिससे भगवान की भक्ति बढ़े। माने पतिव्रता स्त्री को पति में प्रेम करने पर भगवान में प्रेम होगा, और अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दे कि जिससे वे भगवान के भक्त बने। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अपने पर भगवान की दया ही दया मानना चाहिए। हरदम दया पर ही ध्यान देना चाहिए। परिस्थिति का बाहर का रूप क्या है इस पर नहीं देखना चाहिए, दया की तरफ देखना चाहिए। कितनी दया है, कितनी दया है। 5 वर्ष के बालक पर भगवान कितनी दया करते हैं, इस दया को देखकर, ध्रुव जी के साधन को देखकर हमको भगवान की दया के भरोसे खूब आगे बढ़ना चाहिए। प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त थे, भगवान ने प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज मैं आपकी बात समझता ही नहीं, मैंने आपकी भक्ति की है, यदि मैं साथ में कोई संसार की कामना रखता, वरदान मांगने के लिए भक्ति करता तो भक्ति क्या हुई, ये तो व्यापार है, मैं बढ़िया तो नहीं हूं। मैंने अपनी भक्ति कामना को लेकर थोड़े ही की है। भगवान ने कहा कि मेरे संतोष के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा अच्छा ठीक है मांग लेते हैं, मांगो, ध्यान देना। प्रहलाद जी ने क्या मांगा, प्रहलाद जी ने कहा मेरी इच्छा कुछ भी मांगने की न रहे, ऐसा मेरा भाव बना दो, मेरे मांगने की इच्छा ही नष्ट कर दो आप, तो मेरी कोई इच्छा होगी तभी तो बार बार मांगने के लिए कहोगे, मेरे में कोई इच्छा ही न रहे। भगवान बहुत खुश हुए, फिर परीक्षा लेने के लिए कहा कि प्रहलाद ऐसे नहीं, ये तो तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, कुछ मांगो तब बात हो। तो प्रहलाद ने कहा कि अब कुछ मांगना चाहिए, कहा कि मेरे पिता के अपराध को क्षमा कर दें, उनका कल्याण कर दें। भगवान ने कहा कि तेरे जैसा पुत्र जिसके हो गया उसका कल्याण तो उसी समय हो गया, तेरी तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो चुका, तुमने जिसके यहां जन्म लिया है उसके उद्धार में शंका ही क्या है। अब आप देखो भगवान के संतोष के लिए मांगा तो भी क्या मांगा, कि जिस पिता ने उम्र भर दुख दिया उसी की कल्याण की इच्छा की। भगवान ने पिताजी से ये वर मांगा, भगवान राम ने पिता से ये वरदान मांगा कि पिताजी मैंने सुना है जब मैं वन को विदा हो गया था उस समय आपने माता केकी और भरत को शाप दिया कि उसका पिंड मुझे प्राप्त न हो, वाल्मीकि रामायण में आएगा, ये तो आ ही गया, ये बात तो आ ही गई कि दशरथ जी ने केकई का त्याग किया। और दशरथ जी ने एक बात कही, यदि केकई की बात का समर्थन भरत करेगा तो उसके द्वारा दिया हुआ पिंडदान मुझे नहीं मिलेगा। तो ये बात भगवान को पता चली। तो भगवान राम ने जब युद्ध के बाद दर्शन हुए दशरथ जी के तो कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आपने माता केकी और भरत को श्राप दिया था कि उनका दिया हुआ पिंडदान न मिले, तो महाराज माता केकी को और भरत को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही थे, उनको अपने पिता से मांगने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका रहस्य है। ये बात भगवान ने हम लोगों को सिखाने के लिए की है कि भाई अपने साथ कोई कैसा भी बर्ताव करता हो उसका कल्याण देखना चाहिए। जड़ भरत जी की कथा है, सब जानते हैं, उनको नर बलि के लिए देवी के सामने पकड़ करके ले गए, पंडों से कह दिया कि इसकी बलि चढ़ा दो, पंडो ने धमका करके कहा, ए सिर झुकाओ। जड़ भरत जी ने सिर झुकाया, पंडे ने तलवार निकाली और गर्दन पर वो प्रहार करने लगा तो देवी मूर्ति में से प्रकट हो गई, पंडे से तलवार छीन ली, पंडे को मार दिया। जड़ भरत के मन में कोई विकार नहीं हुआ, तलवार पड़ने वाली है और वे अटल है, नीचे ही सिर किए हुए ध्यान देवे। फिर जड़ भरत से देवी ने कहा, बेटा वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जड़ भरत ने हाथ जोड़ करके कहा, मां इसको जीवित कर दो। यही बात प्रह्लाद के बारे में है। कृत्या ने संडामर्क को मारने ये बार डाला जो गुरु थे। कृत्या ने कहा, बोलो प्रह्लाद तुमको कौन कौन कष्ट देता है, सबको मार डालते हैं। प्रह्लाद ने कहा, नहीं मारा, नहीं ऐसा मत करो, मेरे कहने से यदि आप किसी को मारते हो तो मेरे कहने से आप जिलाइए, गुरु के पुत्र जीवित हो जाए। हमको ये बात सीखनी चाहिए, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो ऐसा होता है उससे बढ़कर मेरे लिए कोई प्यारा नहीं होता है। हमें भी ऐसे ऐसे भक्तों से सीखना चाहिए, कामना का त्याग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिसके मन में कोई कामना नहीं है वो उसका बेड़ा पार है, वो गुणातीत है। जो भक्त को भी नहीं, जो मुक्ति को भी नहीं चाहता, जो भक्त मुक्ति को भी नहीं चाहता, भगवान उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं।